नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ अजय मसंद। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार जया जी।
तो जिस तरह से भारोत्तोलन में आज स्वर्ण पदक जीता है, 4-4 स्वर्ण अपने नाम किए हैं हमारे वेटलिफ्टर्स ने, इसके अलावा पीएम ने जो उस तरह की सौगात दी है पूर्वोत्तर भारत को, और फुटबॉल से भी बहुत अच्छी खबर आई है, तो सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के नाम 4 स्वर्ण पदक। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर भारत में बीसीसीआई की 6 इंडोर क्रिकेट अकादमियों का उद्घाटन किया। थॉमस कप बैडमिंटन में भारत का मुकाबला कल चीन से, और भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशियन कप के लिए चीन पहुंची। पुरुष टीम भी पूरी तरह तैयार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेट लिफ्टिंग से, जहां हमें 4 गोल्ड मिले हैं। समोवा की राजधानी अपिया में यह खेल चल रहा है, राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दूसरे दिन ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते। अब पुरुषों में जहां सुनील सिंह है और अभिनव गोगोई हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है अलग अलग भार वर्ग में, जबकि महिलाओं में एसांगफा गोगोई ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और इसी चैंपियन के साथ इसके पैरेलल में आयोजित यूनिवर्सल कप सीनियर में अरुणाचल प्रदेश के चारू पेसी ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो इन खिलाड़ियों की क्या तारीफ करेंगे आप?
देखिए, ये तो एक इंडिया का ट्रेडिशन है। इंडिया वेट लिफ्टिंग में जो है ट्रेडिशनली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता रहा है जया जी। अगर आप लीजिए पुराना हिस्ट्री लीजिए, 2000 सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मलेश्वरी जो हैं ब्रोंज मेडल लेके आई थी, उसके बाद 2020 में मीराबाई चानू ने भी सिल्वर मेडल जीता था, और उसके बाद अभी भी लॉस एंजलिस 2028 के लिए भी जो है डेफिनेटली मुझे लगता है मीराबाई चानू जो है बहुत मोटिवेटेड रहेंगी कि वो वहां पे भी मेडल जीतें और होपफुली सिल्वर या गोल्ड भी जीतें, तो वो भी एक मोटिवेशन है। तो ये जो है ना नॉर्थ ईस्ट का एक ट्रेडिशन बना हुआ है, जहां से बहुत सारे प्लेयर्स जो है वहां से आते हैं, कंपीट करते हैं और यूथ लेवल पे और जूनियर लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन देते हैं। इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हुआ, एशियन गेम्स में भी हुआ, और कॉमनवेल्थ में तो मतलब काफी समय से जो है इंडियन वेट लिफ्टर्स जो है हर एडिशन में कॉमनवेल्थ गेम्स का होता है उसमें मेडल जीते ही आ रहे हैं। लेकिन यही होता है कि सीनियर लेवल पे आके थोड़ा सा कहीं जो है परिश्रम की कमी हो या कुछ भी हो, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाता
है। हम कह सकते हैं एज फैक्टर भी होता है,
एज फैक्टर भी होता है, या काफी लेट जो है जूनियर से मतलब एक लेट स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती है नॉर्थ ईस्ट में एथलीट्स को। लेकिन अब जो है वो सब चीजें चेंज हो रही हैं, और जो जिस हिसाब से हमारा जो खेल मंत्रालय है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो फोकस बना हुआ, वहां से आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत सारे वेट लिफ्टर्स जो हैं और बॉक्सर्स जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट से आने शुरू होंगे। और ये जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में जो वेट लिफ्टिंग परफॉर्मेंस, यूथ एंड जूनियर का जो वेट लिफ्टिंग परफॉर्मेंस है, ये उसी का ही नतीजा है कि गवर्नमेंट का फोकस जो है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ले जाना और उनको टॉप्स में जो है डेवलपमेंट स्क्वाड में डालना, तो उससे जो है ना ये एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसके चलते इतना अच्छा परफॉर्मेंस इंडियन यूथ और जूनियर का, नॉट जस्ट इन वेट लिफ्टिंग बट एवरी अदर स्पोर्ट, शूटिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, हर तरफ।
बिल्कुल। तो हम कहेंगे इन खिलाड़ियों के लिए एक ही लाइन कहेंगे कि सिर्फ वजन नहीं उठाया है बल्कि इन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों को शिखर पर पहुंचाया है, और जिस तरीके से सरकार ने इन पर भरोसा किया है उस तरह से वे इन पर खरे उतरे हैं। अब बात क्रिकेट की। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 134 रन बना लिए थे। अंक तालिका में पंजाब शीर्ष पर है जबकि राजस्थान चौथे स्थान पर है। और कल के मुकाबले में अगर हम देखें तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक तरफा मुकाबला देखा गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से मात दी थी। तो आज के मुकाबले में पंजाब शीर्ष पर है। राजस्थान रॉयल्स का अगर हम पुराना भी मैच देखे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है उन्होंने अभी तक के प्रदर्शन को देखकर, आप क्या कहते हैं?
देखिए, राजस्थान रॉयल्स का जो पिछला मैच था, वैभव सूर्यवंशी ने डेफिनेटली सेंचुरी मारी थी, लेकिन ईशान किशन का जो जो उन्होंने पारी खेली वो उन पे भारी पड़ गई और सनराइजर हैदराबाद जीत गए। और अच्छी शुरुआत भी रही पैट कमिंस जो टीम में आए कैप्टेंसी के लिए, उससे पहले ईशान किशन लीड कर रहे थे, तो बहुत अच्छा रहा था। सनराइजर हैदराबाद के बहुत 200+ 228 या 229 का जो टारगेट था वो चेस कर रहे थे, और अल्टीमेटली जो है सनराइजर हैदराबाद चेस कर गए, दैट इज अनदर थिंग। 450+ रन्स वर स्कोर्ड। लेकिन जैसे कि बात करें आज की पंजाब किंग्स का, जो जिस हिसाब की उनके हिसाब से उनकी टीम बनी हुई है,
जी
प्रभ सिमरन सिंह जिनका लास्ट ईयर एक ब्रेकआउट ईयर था, उन्होंने 500+ रन बनाए थे, अभी भी वो जो बड़े स्ट्रांग चल रहे हैं, ओपनर हैं, और आज भी जो है उन्होंने एक अर्धशतक बना दिया, इज स्टिल अनबीटन। और पंजाब किंग्स 144/3 हो गया एट द एंड ऑफ 14 ओवर, सो अगेन जो है आज हमें लग रहा है फिर 200 रन का आंकड़ा वो पार करेंगे पंजाब किंग्स, जिस हिसाब से उनकी एग्रेसिव बैटिंग है। उनके पास बहुत बढ़िया ओपनर है, प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन है, नीचे कूपर कॉनोली हैं, श्रिया सैयर अभी खेल रहे हैं उनके
जी
कैप्टन, तो डेफिनेटली मैं यही मानता हूं कि ये टीम जो है अंडर अचीवर रही है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है लेकिन अचीव नहीं कर पाई अपना गोल टू विन एन आईपीएल टाइटल सिंस 2008। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो इस एडिशन का जो आईपीएल है, कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा है कि इट कुड बी बिटवीन अ टॉसअप बिटवीन जो रेनिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हैं और पंजाब किंग्स हैं, और मे बी टू अ सर्टेन एक्सटेंट फॉर्मर चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद। तो मुझे लगता है इन तीन टीम में से जो है कोई एक टीम जो है टाइटल जीतनी चाहिए, और मेरा जो है मानना है कि पंजाब किंग्स ही बहुत ही वेल राउंडेड टीम है, बहुत ही अच्छी उनकी जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे उनके बॉलर्स कह लीजिए चाहे उनके बैटर्स कह लीजिए। तो अगर आप देखें जैसे कि मतलब उनके जो बॉलर्स हैं खैर ये तो मैं नहीं मानूंगा कि जो भी है, लेकिन हाँ डेफिनेटली पंजाब किंग्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जा रहा है और 13 पॉइंट पे हैं अभी, और आज जो जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस है, 200+ अगर रन बन जाते हैं तो डेफिनेटली ये भी अपनी जो है टॉप पे जो है पोजीशन और स्ट्रांग कर पाएंगे विथ 15 पॉइंट्स।
बिल्कुल, और देखते हैं अब राजस्थान रॉयल्स अपने बैटिंग के समय क्या कुछ कर पाती है। फिलहाल हम अभी बात कर रहे थे कि सरकार किस तरह से लगातार पूर्वोत्तर भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की
जी
कोशिश कर रही है, तो इसी दौरान इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वोत्तर भारत में 6 अत्याधुनिक इंडोर क्रिकेट अकादमियों का उद्घाटन किया, जो इस क्षेत्र में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के कार्यक्रम का हिस्सा है। और ये अकादमियां रांगपो यानी कि सिक्किम में है, जबकि दूसरा है दोईमुख अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा इम्फाल मणिपुर में, और चौथा मेघालय में है, पांचवा आइजोल मिजोरम में, और छठा है दीमापुर नागालैंड में। तो क्रिकेट में ऑलरेडी इंडियन टीम बहुत अच्छी है और सरकार ये नहीं सोच रही है कि जिसमें अच्छी है उसको बस अच्छा रहने दे, हालांकि इस पे भी जो ग्राउंड लेवल से है वो टैलेंट को लाने की निखारने की कोशिश लगातार कर रही है।
देखिए, अगर आप हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो एक होता है इलीट ग्रुप रणजी ट्रॉफी का और दूसरा होता है प्लेट ग्रुप।
जी
तो जो है ये जो नॉर्थ बहुत समय से जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी टीम्स हैं वो जो है प्लेट ग्रुप में, मतलब जो सेकेंड डिवीजन हो गई, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको इलीट ग्रुप तक ले जाने के लिए एक सरकार की, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी बात लगी कि बीसीसीआई ही जो था एक करता धरता था, लेकिन अब गवर्नमेंट भी जो है क्रिकेट की क्षमता को पहचान रही है, उसकी पॉपुलैरिटी को पहचान रही है, और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ऐसा जो है एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आई है कि क्रिकेट को भी वहां पे प्रोत्साहन मिल रहा है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है अदर स्पोर्ट्स को, ओलंपिक डिसिप्लिन को तो करती रहती है, लेकिन ये क्रिकेट के प्रति जो है ये 6 स्टेट्स में 6 राज्यों में जो इन्होंने जो इंडोर फैसिलिटीज खोलने की मुहिम करी है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यहां से डेफिनेटली जिन बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटीज वहां से नहीं मिल पाती थी उनको अब ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और जो बड़ी टीम्स हैं जैसे आपकी पंजाब हो गई, महाराष्ट्र हो गई, मुंबई हो गई, तमिल नाडु, इन टीमों के साथ खेलने का इनके बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने, और प्रधानमंत्री ने जो ये उद्घाटन किया है सिक्किम के गंगटोक में एक राजकीय समारोह के दौरान किया है, वर्चुअल माध्यम से इनका उद्घाटन किया, और उन्होंने कहा कि यह खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपार खेल क्षमता को साथ लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उधर ओवर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारतीय महिला टीम का अभियान चीन से हार के बाद समाप्त हो गया है। भारतीय महिला टीम ने मेजबान डेनमार्क से 2-3 की हार के साथ शुरुआत की थी। हालांकि बाद में यूक्रेन पर 4-1 से शानदार जीत हासिल करने के बाद टीम ने वापसी की कोशिश की थी, लेकिन कल भारतीय टीम को चीन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जिसके बाद वह प्रतियोगिता से बाहर हो गई। और अब भारत की उम्मीद पुरुष टीम पर है, जो कल थॉमस कप में चीन से भिड़ेंगे।
भारतीय फैंस की निगाहें अब पुरुष टीम पर टिकी हैं, जो थॉमस कप ग्रुप ए में अपने आखिरी मुकाबले में चीन का सामना करेगी। वर्ष 2022 में चैंपियन रही भारतीय टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया पर 5-0 की शानदार जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत और चीन इस ग्रुप में सबसे ऊपर हैं। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत कनाडा पर 4-1 से जीत के साथ की थी। वहीं चीन ने अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराया था, जबकि कल कनाडा को 4-1 से पराजित किया था। भारत और चीन अब कल अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में आमने सामने होंगे, जिससे ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहने वाली टीम का फैसला होगा। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
थॉमस कप में चीन जैसी मजबूत टीम से सामना भारत के लिए कितना चुनौतीपूर्ण?
देखिए 2022 में तो इंडिया सब टीमों को हरा के थॉमस कप पहली बार अपने मतलब हिस्ट्री में जीती थी, और डेफिनेटली इंडिया के पास बहुत अच्छी टीम है। लक्ष्य सेन है कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन, आयुष सेट्टी जिन्होंने यूएस ओपन टाइटल जीता हुआ है, और हमारे इंडिया के शीर्ष के डबल्स खिलाड़ी हैं सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये हैं एचएस प्रणॉय जो 2022 के कैंपेन जो थॉमस कप का कैंपेन था उन्होंने लीड किया था और टाइटल जितवाने में मदद करी थी वो हैं। तो डेफिनेटली इंडिया की बहुत अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छी टीम, और ये मुझे ये लग रहा है कि चाइना का जो मुकाबला है चाइना को बड़ी करारी टक्कर देगी, और मुझे लग रहा है इंडिया इसमें जीत भी सकती है और अपना जो ग्रुप है उसको टॉप भी कर सकती है।
बिल्कुल, तो अब तक भारत का सफर अच्छा रहा है, लेकिन अब देखते हैं कल भारतीय टीम चीन की दीवार को तोड़ सकती है या नहीं। भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 विमेंस एशियन कप में हिस्सा लेने के लिए चीन के सूझो पहुंच गई है, और अंडर 17 पुरुष टीम भी एशियाई कप के लिए पूरी तरह से तैयार है। अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
21 साल बाद इस बड़े टूर्नामेंट में वापसी कर रही भारतीय महिला टीम के अभियान की शुरुआत 2 मई को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। इसके बाद 5 मई को जापान और 8 मई को लेबनान के साथ मैच खेले जाएंगे। भारत के सभी मैच सुझो ताहियू फुटबॉल स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में जाएंगी। तीनों ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहने वाली दो सर्वश्रेष्ठ टीम भी क्वार्टर फाइनल का हिस्सा बनेंगी। क्वार्टर फाइनल में जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने वाली सभी चार टीमें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप मोरक्को 2026 के लिए क्वालिफाई करेंगी। उधर भारत की अंडर 17 पुरुष टीम अपने अभियान का पहला मुकाबला सऊदी अरब के जेद्दाह में 6 मई को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। 10 मई को भारत का सामना उज्बेकिस्तान से और 13 मई को उत्तर कोरिया से होगा। शीर्ष 8 टीमों को अंडर 17 पुरुष विश्व कप खेलने का मौका मिलेगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
तो एफसी में 21 साल बाद जिस तरह से महिला टीम ने टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और उधर पुरुष टीम भी अपने सारे मैत्री मैचेस अच्छे से खेले हैं। तो इस पर अंडर 17 नेशनल फुटबॉल टीम और दिल्ली सॉकर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज गुप्ता से हमारे स्पोर्ट्स कैन के संवाददाता विशेष शुक्ला ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने भारतीय फुटबॉल के भविष्य के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
ये 3 मैच इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस 3 मैच से आगे जा पाए एशिया कप अंडर 17 के अंदर तो इंडियन फुटबॉल इतिहास बनाएगी और पहली बार हम विश्व कप में क्वालिफाई करके अपनी जगह बनाएंगे। हमने ईरान को हरा के एशिया कप में क्वालिफाई करा है, जाहिर है कि हमारी टीम भी बड़े से बड़े टीम को भी हरा सकती।
तो लंबे समय बाद फुटबॉल से कुछ अच्छी खबर आ रही है अजय जी।
जी हाँ, मेंस में तो इंडिया की चांस थोड़े से ब्राइट हो भी गए हैं, क्योंकि डीपीआर कोरिया जो है ग्रुप डी से जो है विड्रॉ कर गई है, जिसके चलते सिर्फ 3 टीमें रह गई, इंडिया, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, एंड टॉप 2 फ्रॉम द ग्रुप विल क्वालिफाई फॉर द अंडर 17 वर्ल्ड कप। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए टू क्वालिफाई फॉर मेन्स टीम के लिए टू क्वालिफाई फॉर द अंडर 17 वर्ल्ड कप। विमेन्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इनको बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है। ऑफकोर्स रशिया के साथ 3 मैच हारे जरूर थे सोची में, लेकिन उसके बाद उनका कैंप हुआ था गुड़गांव में, जिनका इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ इस कैंप में।
बिल्कुल, और श्रोताओं अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।